ईशान अब भी आरवी के ही बारे में सोच रहा था, तभी उसके कानों में डोरबेल की बजने की आवाज पड़ी। उसने सर घुमाकर देखा, पर जब तक वो उठकर जाता, उसकी निगाहें किचन से बाहर आती आरवी पर पड़ गईं। आरवी के हाथ बेसन से सने हुए थे, माथे पर भी बेसन लगा हुआ था। ये देखकर शान की भौहें खट्टी हो गईं, कदम अनायास ही उसके तरफ बढ़ गए। आरवी गेट तक तो पहुंच गई, पर गेट खोलने में असमर्थ थी। वो परेशान सी गेट खोलने की कोशिश कर रही थी, पर दोनों हाथ बेसन से सने थे, तो हार मानकर वो जैसे ही जाने के लिए पलटी ताकि हाथ धोकर वापस आ सके, वो अपने सामने खड़े शान से टकराते टकराते बची और हड़बड़ाहट में पीछे हटने को हुई तो शान ने आगे बढ़कर उसके सर के पीछे अपनी हथेली लगा दी ताकि दरवाजे से उसको चोट न लग जाए। आरवी ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया था ताकि शान के कपड़े खराब ना हों, और अब वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए घबराई हुई सी उसको देखे जा रही थी। इस वक्त वो और भी क्यूट लग रही थी। शान की निगाहें उसकी घबराई निगाहों से जा टकराईं। दोनों ही इस पल में खोसे गए। तभी एक बार फिर डोरबेल बजने की आवाज उनके कानों में पड़ी, जिससे दोनों का ध्यान भटका। आरवी ने तुरंत ही निगाहें फेर ली। शान ने उसकी बांह पकड़कर उसको आगे करते हुए कहा, देखकर काम किया करो, अभी लग जाती तुम्हें। उसकी आवाज में फिक्र झलक रही थी। आरवी एक बार फिर उसकी आंखों में झांकने लगी। शान ने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और उसके माथे पर लगा बेसन और गाल पर लगे आटे को साफ करते हुए आगे कहा, माना कि घरेलू चीजें फेस के लिए अच्छे होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें मुंह पर लगाकर यहां वहां घूमती रहो, और अगर लगाना ही है तो पूरे चेहरे पर लगाओ ताकि सामने वाले को देखने में अच्छा लगे। यूं आधा अधूरा लगाकर घूमोगी तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। शान ने बड़े ध्यान से उसके चेहरे को साफ कर दिया। अब उसने आरवी की आंखों की तरफ देखा तो वो आंखें बड़ी बड़ी करके हैरान परेशान सी उसे ही देखे जा रही थीं। शान उसके एक्सप्रेशन देखकर तिरछा मुस्कुराया, फिर उसके नज़दीक आते हुए उसके गालों पर झूलती लटों को अपनी उंगली से उसके कान के पीछे कर दिया। उसकी उंगली के पोर आरवी के गालों को छू गई। इसके साथ ही उसके धड़कनों की लय बढ़ गई, दिल बेचैन हो उठा, शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, चेहरे की रंगत बदल गई, सिंदूरी आभा उसके चेहरे पर फैल गई। उसके स्पर्श को महसूस करते हुए पलके अनायास ही झुक गई। उसका शर्म से गुलाबी चेहरा बेहद दिलकश लग रहा था। शान कुछ पल बड़े प्यार से उसके घबराए हुए दिलकश चेहरे को निहारता रहा, फिर पीछे हटते हुए बोला, वैसे तो तुम्हें जरूरत नहीं है, फिर भी अगर तुम्हें मेकअप की जरूरत हो तो बता देना, मैं तुम्हें मेकअप किट ला दूंगा। दोबारा आटे और बेसन का अपना मेकअप मत करने लगना। इतना कहकर वो हल्का सा हंस दिया। उसकी आवाज आरवी के कानों में पड़ी तो उसने हौले से अपनी पलके उठाई तो आंखों के सामने शान का हैंडसम चेहरा आ गया, जिस पर इस वक्त कातिलाना मुस्कान छाई हुई थी, और वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी मुस्कुराती आंखें आरवी पर ही टिकी थीं। दोनों एक बार फिर एक दूसरे की आंखों की गहराइयों में खोने लगे, पर डोरबेल की आवाज ने उनका ध्यान बटाया। शान ने अब गंभीरता से कहा, वैसे मानना पड़ेगा दिमाग बहुत तेज है तुम्हारा, दोनों हाथ बेसन में सने हैं फिर भी डोरबेल की आवाज सुनकर भागते हुए दरवाजा खोलने चली आई, वो भी बिना हाथ धोए। उसकी बात सुनकर आरवी झेपते हुए साइड हट गई और किचन में चली गई। शान उसके कुछ पल पहले वाले हया से गुलाबी चेहरे को याद करते हुए मुस्कुरा दिया। उसने दरवाजा खोला तो सामने अनुपमा जी खड़ी थीं। शान ने झुककर उनके पैर छू लिए तो उन्होंने भी उसको आशीर्वाद दिया, फिर आसपास देखते हुए बोली, आपने दरवाजा खोला, आरवी कहाँ है? किचन में है, शान ने सहजता से जवाब दिया, पर अनुपमा जी उसके जवाब पर कुछ नाराज लग रही थीं। वो दरवाजा बंद करके अंदर आईं, तब तक आरवी हाथ धोकर बाहर आ गई। उसने उनके पास आकर मुस्कुराकर कहा, मिलाई आप आंटी से? बड़ी जल्दी वापस आ गईं आप, मुझे तो लगा था इतने दिनों बाद मिलने गई हैं तो आराम से दो चार घंटे बातें करेंगी, और मुझे ही फोन करके आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आपको लंच के लिए घर भी आना है। अनुपमा जी ने उसकी बात तो सुनी पर उनके लबों पर मुस्कान नहीं थी। उन्होंने हल्के नाराजगी से कहा, हम तो वक्त पर आ गए, पर आप हमें बताइए कि आप इतनी देर से कहाँ थी? हम इतनी देर से बेल बजा रहे थे, आखिर में दामाद जी को ही दरवाजा खोलना पड़ा, आप क्यों नहीं आई दरवाजा खोलने? आरवी ने जब उनका सवाल सुना तो उसकी भी मुस्कान गायब हो गई, निगाहें शान की तरफ घूम गई जो लबों पर शातिर मुस्कान सजाए उसे ही देख रहा था। शान पर नजर पड़ते ही आरवी को वो पल याद आ गया जब कुछ देर पहले ही दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और उसके गाल एक बार फिर गुलाबी हो गए। उसने तुरंत शान पर से निगाहें हटा ली और अनुपमा जी को सफाई देते हुए बोली, मैं तो यहीं थी माँ, और मैं ही गई थी दरवाजा खोलने, पर मेरे हाथ में बेसन लगा था इसलिए बहुत कोशिश करने पर भी मैं दरवाजा नहीं खोल सकी, फिर मैं हाथ धोने चली गई और इतने में इन्होंने दरवाजा खोल दिया। आरवी ने आधा सच और आधा झूठ उनके सामने परोस दिया, शान ने उसकी बात सुनी तो गहरी निगाहों से उसको घूरने लगा। आरवी ने भी बदले में उसको घूरा और उसके वजह से ही वो अभी फंसी थी। अनुपमा जी ने उनकी बात सुनी तो कुछ देर नाराजगी से उसे देखने के बाद शान की तरफ निगाहें घुमाते हुए बोली, माफी चाहेंगे हम, आपको परेशान होना पड़ा। पता नहीं इन्हें कब अकल आएगी, हम तो उनकी बचकानी हरकतों से परेशान हो गए हैं। बताइए, बेसन लगे हाथों से दरवाजा खोलने चली आई और आपको बेवजह परेशान होना पड़ा। अनुपमा जी ने एक बार फिर नाराजगी से आरवी को देखा। वही आरवी ने उनकी बात सुनी तो मुंह फुलाते हुए बोली, इंसान हूं मैं भी, हो जाती है कभी कभी गलती। एक गलती क्या हो गई, जिसे देखो वही सुनाने में लग गया है। आरवी ने एक नजर शान को देखा और किचन में चली गई। अनुपमा जी हैरानी से आरवी को देख रही थी क्योंकि वो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करती थी। फिर जब आरवी गुस्से में वहां से चली गई तो उन्होंने शान को देखकर कहा, पता नहीं आज उन्हें क्या हुआ है, ऐसे कभी बिहेव नहीं करती हैं। हम उनकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, पहले उनके वजह से आपको परेशान होना पड़ा और अभी भी वो आपको ऐसे बोलकर चली गई। इट्स ओके आंटी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे ना तो कोई तकलीफ हुई है ना ही आरवी की बात का बुरा लगा है। अनुपमा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर दोनों वहां बैठ गए। अनुपमा जी उससे घर पर सबके बारे में पूछने लगी और अपने नेचर के उलट शान उनके सवालों पर मुस्कुराकर जवाब भी दे रहा था।